तो वो क्या करेगा, पानी को छोड़ देगा, दूध सब पी लेगा और पानी रह जाएगा। उसी तरह से जो श्रोता आत्म विवेक वाली बातें हैं उनको ग्रहण करता है और अनात्म वाली को छोड़ देता है, ऐसे श्रोताओं को हंस कहते हैं। जिस प्रकार से तोता पढ़ाया जाता है, पढ़ाते हैं, वो पढ़ लेता है मधुर वाणी से, दूसरों को प्रसन्न कर देता है। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन विधे राधे राधे कृष्ण कृष्ण उसको कहला लो कह देता है, और उसको गंदी बात सिखा दो तो वो भी कह देता है। तो बहुत परिश्रम से सुख सिखाया हुआ है, किंतु यह तू सुन करके उपदेश को पालन नहीं करता। अभी बिल्ली आ जाए एक थप्पड़ मार दे जाल के ऊपर में, तो वो कृष्ण कृष्ण नहीं कहेगा, वो क्या कहेगा, चे करते हुए प्राण छोड़ देगा। तो वैसे कृष्ण की कथाओं को सुन करके, सार को ग्रहण नहीं करके, अंत समय में या किसी समय में कृष्ण को भूल जाते हैं और टेंटे संसार के विषय की बातें ही कहते हैं, किंतु भागवत भी सुन आते हैं, तो ये लोग ऐसे हैं। हैं? ये प्रौर में इसलिए कि सुनते हैं किंतु भूल जाते हैं बेचारे, और दूसरों को आनंदित करता है। श्रोता कहता है ना, वो स्वयं भी सुन करके और दूसरों को भी शिक्षा देता है। बड़े बड़े पंडित लोग हैं किंतु भागवत का आचरण नहीं करते, पैसे का बनाने का धंधा कर दिए हैं, इसलिए वो आएगा कल के उपाख्यान में, श्रवण के महात्म में, कथा का सार नहीं रह गया। क्यों? अपने अर्थ के लिए लालसा से सब जगह सुनाते हैं, अब कथा का दूसरों को सुना रहे हैं किंतु कथा का सार इसलिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए सुनाते हैं, दूसरों का परमार्थ के लिए कल्याण के लिए नहीं सुनाते। तो दूसरों को जो आनंदित करता है किंतु खुद आचरण नहीं करता, उसको सुख कह दिया। सुनता है और सीखता भी है किंतु आचरण नहीं कर पाता, तभी तो इसका कल्याण हो जाएगा। जब कभी साधु संघ में पड़ गया बस इसका कल्याण हो गया। और मछली कैसे मीन मौन होकर के, अपलक रह करके, आंखों से देखती हुई खीर सागर में दूध पीती रहती है। खीर सागर की मछली को मीन कहते हैं, यहां पर मीन खीर सागर में रहती है, उसमें पलक होते नहीं है, बोलती नहीं है, पान करती रहती है, ये है मीन। कथा में बोलने वाले ने? वो उनके लिए फिर अवर में बतलाएंगे। कथा में डिस्टर्ब कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो गड़बड़ हो गया, इसलिए मीन को रखा प्रवर में। ये बोलेगी नहीं कुछ, आंखों से कथा का पान करते, वैसे कानों से कथाओं का जो पान करने वाले हैं उनको कहते हैं मीन। अच्छा, और जो अवर वाले हैं माने कनिष्ठ वाले, पहला हुआ ब्रेक, ब्रेक ब्रिक, ब्रिक माने भेड़िया, बेणी की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयंकर गर्जना करता है, भेड़िया है गर्जन करता है, तो उसे हिरण इत्यादि डर जाते हैं। तो यहां पर हिरण इत्यादि बतला श्रोताओं को, अच्छे श्रोताओं को, भेड़िया जैसे गर्जन करके उनको डरा देता है, ऐसे ही बीच बीच में जोर जोर से जो बोल करके और सब श्रोताओं का ध्यान भंग कर देते हैं और वहां पर बैठे हुए भी रहते हैं, उनको कहा गया ब्रिक। सुनते हैं बस बीच में अपनी प्रतिष्ठा के लिए कभी कभी शरीर को झोंक देते हैं, कभी कपाने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी बोल उठते हैं इन लोगों को, ये ब्रिक हुए। हिमालय के शिखर पर एक भ्रुंड जाति का पक्षी होता है, किसी की शिक्षाप्रद बातें सुन करके वैसे ही बोला करता तो है किंतु उसे कुछ भी अपना लाभ नहीं उठाता, इसलिए भागवत की कथाओं को सुन करके सीख तो लेता है किंतु न अपना कल्याण करता है न दूसरों का कल्याण करता है। बस जागतिक वस्तुओं को बटोर लेता है। ये हो गए भुरुंदर। भुरुंदर ब्रिज माने बैल। जिस प्रकार से मीठा अंगूर हो या कड़वी खली हो जो बैलों को दिया जाता है, दोनों को वो एक ही समान खाते हैं, है ना? ऐसे ही उसी प्रकार सभी बातों को ग्रहण करते हैं, भागवत के सार को नहीं ले पाते। आसार और सार, सब शास्त्रों की बातें सुनते हैं, उनमें ये ताकत नहीं होती कि सार वस्तुओं को ग्रहण कर लें, आसार को छोड़ दें। ऐसे हो गया ये वृक्ष। और जिस प्रकार से ऊंट नीम की पत्ती हो और साथ ही साथ में आम हो तो नीम की पत्ती ही खाएगा, आम नहीं खाएगा, ऐसे ही जो लोग भगवान की कथाओं को छोड़ करके विपरीत संसारी बातों में रमते हैं और कभी कभी कथा में भी आ गए, उसको ग्रहण नहीं करते सार को, ये इस तरह से ये लोग हैं ऊंट की तरह में। इसी तरह से और भी भाग हैं, मैंने उद्धव जी कह रहे हैं, मैंने विस्तार से नहीं यही संक्षेप में बताया, इसलिए जो पहले कहे गए हैं चातक या हंस, उसकी भांति कथाओं को श्रवण करके उसको अपने जीवन में पालन करें तो उससे जल्दी काम होकर के कृष्ण प्रेम मिलता है, भव सागर से भी तर जाते हैं। अब फिर एक कुछ वक्त लाते हैं, श्रीमद् भागवत का एक निर्गुण, ये तीनों गुणों के अंतर्गत में है किंतु एक निर्गुण श्रोता होता है, जैसे परीक्षित महाराज जी थे, सुखदेव गोस्वामी हैं, नारद हैं, ये निर्गुण श्रोता हैं। भागवत के लिए कह रहे हैं कि चार तीन प्रकार के सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण, ये चार प्रकार के श्रोता और वक्ता होते हैं, जिसमें जिस ये कथा में, भागवत की कथा में राजसिक समस्त प्रकार की यज्ञ की तैयारी की गई हो, बहुत सी सेवा पूजा के लिए बहुत सी चीजें उसमें रखी गई हैं, और बड़े परिश्रम के साथ में उत्तावली में सात दिन का जो किया हुआ भागवत जो होता है, होता है उसका सेवन राजस है, राजस सप्ताह है, बड़ी तैयारी के साथ में गाजे बाजे और तरह तरह के विपुल साधनों से जो किया जाए और सात दिन में समाप्त हो, सात दिन में समाप्त करना ही है, तो ये हो गया राजस। एक या दो महीने में धीरे धीरे रस का स्वादन किए हुए परिश्रम के साथ में, सावधानी के साथ में, श्रद्धा के साथ में जो शुद्ध श्रवण होता है ने? उसको सात्विक सेवन कहते हैं। सात्विक सप्ताह, सात्विक माने एक माह वाला। तामसिक सेवन वह है भूल से कभी बीच में छोड़ दिया गया, आरंभ किया बीच में छोड़ दिया, फिर आरंभ किया फिर छोड़ दिया, और उसमें धर्म अर्थ काम को अपना लक्ष्य बनाया, ऐसा सब सुनना ये तामसिक हुआ। जब वर्ष महीना दिनों का कोई नियम नहीं है? कौन दिन, कौन नक्षत्र, कौन घड़ी, कौन राशि में, अभिजीत मुहूर्त में या कौन सा, कोई भी नियम नहीं है। परीक्षित महाराज जी केवल सात दिन जीवित रहने वाले थे, अंतिम उनका दिन था, इसलिए सात दिन उन्होंने सुना, इसलिए सात दिन में ही हम श्रवण करेंगे, एकदम विधि हम बांध लेंगे, ये नहीं। उसके लिए कोई भी दिन, कोई भी मुहूर्त, कुछ भी नहीं, बल्कि जिस समय भागवत श्रवण हो वही सबसे अभिजीत मुहूर्त का भी बाप है, वही सबसे शुभ समय है। दीक्षा के लिए बहुत से लोग दिन देखते हैं हरिनाम के लिए, जिस दिन उनका किसी व्यक्ति का हरिनाम और दीक्षा हो, गुरु के यहां गया, जिस दिन दीक्षा दे दिया, वही सबसे श्रेष्ठ दिन है, वही सबसे नक्षत्र, राशि, मुहूर्त, करण इत्यादि सबसे वही श्रेष्ठ है। ये निर्गुणों के लिए बतला रहे हैं। जब वर्ष महीना और दिनों का नियम छोड़ करके वर्ष मास आदि नाम तू विमुच्य नियम आग्रहम, नियम और आग्रह छोड़ करके सर्वदा प्रेम भक्तैव सेवनम निर्गुणम महत्। निर्गुण सेवन क्या है? इन सब को छोड़ करके ने? प्रेम के साथ में श्रवण करने का नाम ये है निर्गुण श्रवण। राजा परीक्षित सुखदेव के संवाद में जो सेवन हुआ वो निर्गुण हुआ। 7 दिन का क्यों हुआ? इसलिए 7 दिन का ही समय था ने? इसलिए करें दिनों की संख्या के अनुसार में जो है वो तो केवल बचा हुआ दिन था, इसलिए किया गया। इस कथा का कोई भी नियम नहीं, प्रेम से सुनना ही एकमात्र नियम है। जहां पर भी सुन सकता है, कहीं पर भी सुन सकता है, तीर्थों में अधिक फल पड़ेगा। विशेष करके वृंदावन के कुंज गली में, उसमें भी सेवा कुंज में इसकी महिमा अपार है। विशेष करके हम लोग 9-10 दिन कर रहे हैं, इसलिए मत समझिए कि कोई लंघन हो रहा है। ये जेठ महीना आ गया इसलिए ऐसा मत समझेंगे, ये समस्त महीनों का जेठा भाई है इसलिए ये जेठ है। और वृंदावन में हो रहा है, भागवत के लिए कोई नियम नहीं, वही प्रेम का नियम है। इसमें जहां कहीं जब भी हो जाए, प्रेम गली, मान गली, दान गली, सेवा गली, ये सब इस जगह में मिलित होती हैं, सबका चौमुहाना। और कृष्ण जी राधा जी की सेवा कर रहे हैं वो ये स्थान, बहुत सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूं कि यहां पर कथा सुनने के लिए राधा कृष्ण भी उपस्थित हो जाएंगे तो और की तो बात क्या, उद्धव भी वहां उद्धव कुंड से यहां पर आ जाएंगे कथा सुनने के लिए। आप प्रेम से सुनिए और इसका केवल प्रेम फल ही अंतिम लक्ष्य रखेंगे, बस सब सिद्धि हो जाएगी, कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी और वो भी हो जाएगा। अब फिर कह रहे हैं यद्यपि भागवत की कथा धनम पुत्रां तथा दारान वाहन आदि जसो गृहान असपात्नम न च राज्यम च दद्यात भागवती कथा। भागवत कथा ये यद्यपि ये देती है, यद्यपि इसमें लगा दिया। क्या यद्यपि देते हैं? धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े, वाहन, रत्न, भवन, मकान, निष्कंटक राज्य इत्यादि, मुक्ति इत्यादि सब कुछ देने में ये श्रीमद् भागवत सब कुछ देने वाली है यद्यपि। तो अभी भाई जहां तक हो सको सकाम मत बनो, सकाम मत बनो। यद्यपि कोई सकाम भी करता है तो ये एक आशा है कि सकाम की काम भी पूर्ण करके और अंत में साधु संग से क्या करेगी वो कथा, अंत में ले जाएगी, किंतु थोड़ा सा समय लग जाएगा। अकाम सर्व कामो मुक्त काम उतार दीप्ति ब्रेन भक्ति युगेन जजति पर संपर्क। और कह रहे हैं श्रोता के अनुसार में इसका फल होता है और वक्ता के अनुसार भी। वक्ता और श्रोता उत्तम निर्गुण कोटि का होगा तो निर्गुण फल मिलेगा, विशेष करके वक्ता के ऊपर में अधिक है। प्रतिदिन अब इसका नियम बतला रहे हैं, कुछ पालन करने के लिए योग्य विधियां हैं, आप लोग भी उस नियमों का पालन कर सकें तो अच्छा है। शुद्ध श्रोताओं के लिए कोई भी नियम नहीं, ये पहले समझ लीजिए, निर्गुणों के लिए, किंतु फल प्राप्ति वालों के लिए कुछ नियम जरूरी है। और सब हम लोगों को भी कुछ नियम करना चाहिए क्योंकि प्रेमा भक्ति तो चाहते ही हैं। इसलिए कहते हैं प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान करें भाई, सब श्रोता लोग वक्ता लोग प्रातः काल में स्नान करें, जिसको इच्छा है पासी में जमुना जी बह रही हैं उसमें कर ले, या यहाँ पर भी जो कल में पानी आ रहा है जमुना जी का ही पानी है, अपने अपनी सुविधा के अनुसार में शरीर के अपने अनुकूल की दृष्टि से यहाँ कर लेंगे या वहाँ कर लेंगे। यहाँ करके भी जमुना जी का दर्शन और आचमन किया जा सकता है, जिनका समर्थ है वहां पर भी कर सकते हैं। प्रातः काल में स्नान करेंगे, अपना नित्य कर्म पूरा करेंगे, नित्य काम माने भगवान का नाम, अपना संध्या आनिक मंत्र जप इत्यादि कर लेंगे, फिर भगवान का यहाँ पर चरणामृत आपको साथ में मिल जाएगा, चरणामृत ले लेंगे। फिर श्रीमद्भागवत की पुस्तक और गुरुदेव दोनों का पूजन और अर्चन करेंगे प्रतिदिन। भागवत कथा से पहले गुरु जी और भागवत की पूजा करके, पहले दिन हम लोगों ने आज कृष्ण की, व्यास जी की, नारद जी की, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित इत्यादि की पूजा किया, और कल भी हम लोग वहाँ पर स्थापन करके इन सब लोगों की पूजा करें। स्मारकों की तरफ में हम लोग नवग्रह और गणेश इत्यादि की पूजा नहीं करेंगे, किंतु गणेश जिनकी उपासना करते हैं उन सिंह जी की, उन परा सरस्वती जी की, व्यास जी की, नारद जी की, ब्रह्मा जी की, जो आदि इसके हैं, कृष्ण की, राधा जी की पूजा हम करेंगे। इसमें आप लोग कोई शंका की बात मत करेंगे ने? इसलिए यहाँ पर जितने उपग्रह नवग्रह इत्यादि है सब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर के अपना सार्थक मानेंगे। यदि यहाँ की धूल भी लग जाए और कथा के कण भी मिल जाए तो वो अपना सार्थक समझेंगे, इसलिए कोई भी संदेह की बात मत रखें। लाख पंडित कोई हो, करोड़ों पंडित हो, उसको वेद इत्यादि सब याद हो, किंतु वैष्णव नहीं है, सिर्फ और वैष्णव तिलक नहीं, गले में माला नहीं, और विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करता, तो उसके मुख से पाठ सुनने से मुख्य इत्यादि में जाकर के जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक वैष्णव भले ही विद्वान न हो, संस्कृत का श्लोक भी उच्चारण नहीं करता हो, किंतु कृष्ण में अनन्य भक्ति हो, उसके मुख से ही भागवत सुनना चाहिए। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोत्कृष्ट यथावत्। यदि वैष्णव है तो उसके मुख से, भले विद्वान नहीं हो, और यदि विद्वान वैष्णव मिल जाए, सुखदेव की तरह की बालक भी मिल जाए, कोई भी हर्ज नहीं, उसे ही भागवत सुनना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान लोग त्रिपुंड इत्यादि भस्म धारण करके श्रीमद् भागवत को एकदम मुखस्त सुना लेंगे, उससे हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं। हमको तो वैष्णव श्रोता और वैष्णव वक्ता होना चाहिए, इसलिए वैष्णव वक्ता के मुख से हम लोग भागवत श्रवण करेंगे। तो कहते हैं कि हाँ, गुरु जी की और पुस्तक श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना आरती करके, और इन जिनको कहा मैंने, नव जोगेंद्र हैं, नारद ऋषि जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, इनकी पूजा। और सबको निमंत्रण, जितने देवता हैं, गणेश इत्यादि, इंद्र प्रभृति, जितने देवता हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, हम सबका आवाहन करेंगे। सब लोगों के लिए स्वागत है, हरि कथा में पधारें और श्रवण करें, सबका कल्याण हो। इसमें कथा में मौन रहे, मौन रहे, कथा सुने, प्रेम नींद ना आने पाए, और दूसरों से बातें मत करें, श्रद्धापूर्वक इसका एक एक शब्द पीने की चेष्टा करें। इसीलिए कहीं नींद ना आ जाए, आलस्य ना आए, इसलिए भोजन न करके यदि हो सके तो दूध और खीर का केवल सेवन करें और मौन होकर के सुने, जिससे कि गंदी हवा न निकले, वायु इत्यादि, उसके लिए सब भी अल्प भोजन आहार करे, निद्रा आलस्य प्रमाद न आने पाए और पवित्र रूप से रहे, नहीं तो दूसरों को भी डिस्टर्बेंस होगा, अपना भी डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए वक्ता श्रोता दोनों नियमित रूप से अल्प आहार यदि हो सके तो दूध या फल इत्यादि का करें, और नहीं तो जिसका जैसा है भागवत प्रेम से सुनने की आवश्यकता है, किंतु ये सब का विचार करके देखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, जहां तक हो सके भूमि पर शयन करें, भूमि पर शयन करें, कुछ कष्ट तो कृष्ण के लिए करना ही पड़ेगा, तो जो सोता है जहां तक हो सके ऐसा नियम कर ले तो और अच्छा है। पलंग इत्यादि की जरूरत नहीं होगी, मोटे मोटे तकिया गलीचों की जरूरत नहीं होगी, और विलासिता की जरूरत नहीं होगी। जहां तक हो सकेगा हम लोग उसी नियमों का पालन करते हुए करेंगे, अधिक विलासिता में राजसिक ठाट में हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो भागवत की कथा आच्छादित हो जाएगी और विलासिता बढ़ जाएगी और हम लोग फल से वंचित हो जाएंगे। इतना परिश्रम करके खर्च करके भी यदि हम वंचित रह गए तो सब फिर क्या हुआ, इसलिए इन सब नियमों को देख करके चलेंगे। अब कहते हैं कथावाचक जबकि ये कथा हो जाए समाप्ति पर भक्तों को और ब्राह्मणों को भोजन कराए, उनको दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण इत्यादि गौ इत्यादि भी दें। इस प्रकार के विधि विधान से पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री घर पुत्र राज्य धन इत्यादि जो भी लालसा करता है मिलता है। किंतु एक बात और कह दिया, सकाम भाव बहुत विडंबना है, दक्षिणा की बात ही विडंबना की बात है। दक्षिणा में अपना तुम हृदय दे दो भगवान को, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है, इससे तो प्रेम मिल जाएगा। और दक्षिणा से प्रेम नहीं भाई मिलता, तब हां जहां तक हो सके वंचना नहीं करनी चाहिए, अपने अर्थ के अनुसार में उनको देना चाहिए, बात ठीक है। किंतु वक्ता जो है वो इसमें कोई भी लालसा न रखे, नहीं तो वो च्युत हो जाएगा, कोई भी लालसा न रखे। परंतु श्रीमद्भागवत की कथा ऐसी शोभा नहीं देती है सकाम, सुखदेव की तरह में कहा और सुना गया ही भागवत लाभदायक और निर्गुण होता है। हम लोग भी वैसे सुनने की और वक्ता बोलने की चेष्टा करें, सुखदेव और उस सभा के समान। कल युग में श्रीमद् भागवत से बढ़कर के और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, ये कृष्ण प्रेम को देने वाले हैं। स्कंद पुराण में संक्षिप्त में उनका जो महात्मा था हमने वर्णन किया, आप लोग सारा ग्राही हैं, आप इसको ग्रहण करेंगे और हम लोगों का भी ऐसा ही सुखदेव की भांति निर्गुण ये कथा हो सके। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, विघ्न बाधाएं आती हैं किंतु मैं समझता हूँ कि भगवान की कृपा से इस वृंदावन धाम में और उसके हृदय रूपी इस सेवा कुंज में यहाँ पर कोई विघ्न की कोई संभावना नहीं। जमुना जी चारों तरफ से यहाँ पर हैं, अपने आप विघ्न रक्षकों को जितने हैं यहाँ सब श्रीमद् भागवत सुने और उनका भी कल्याण हो, यही प्रार्थना कर। कभी कोई यदि विघ्न भी होता है, विचलित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वर्षा भी आ गई, हम लोग वहां पर कथा अपना जारी रखेंगे, इधर उधर पढ़ेंगे, आंधी भी आई कोई भी बात नहीं। इस तरह से हम लोग श्रीमद् भागवत का 8 दिन रखा गया है, 8 दिन 9 दिन हम लोगों का ये पूर्ण होगा। क्यों तो 7 दिन का प्रोग्राम है किंतु 9 दिन में पूरा होगा। आप लोग बड़े प्रेम के साथ में इस प्रकार से भावना से आप लोग श्रवण करें, हम लोग श्रवण करें, सभी लोगों का अनुभव करें। पंचाकल्प तुर्भ्यश्च कृपा कल हम वंशाकल्पसर्गस्य कृतासिंहभ्यैवत पतितानां पामनिभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तुते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमः। यं प्राव्रजन्तमनुते समपेतकृष्यन् द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतमुनिमानुतो। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग सेवा वृंदावन और उसके बीच में सेवा कुंज और सेवा कुंज में भी जहां दान गली मान गली प्रेम गली कुंज गली ये सब जहां पर मिलित हुई है, जहाँ पर कि सब जगत के आराध्य श्याम सुंदर समस्त अवतारों के अवतारी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जहाँ पर कि श्रीमती जी की सेवा करते हैं वो सेवा कुंज के अंतर्गत हम लोग बैठे हैं। आज हमारे बंबई के बद्री प्रसाद खंडेलवाल, श्री बद्री प्रसाद खंडेलवाल, उनके सुपुत्र और उनकी पुत्र बहनें, उनकी बहनें, उनकी लड़कियां, सभी परिवार बड़ी श्रद्धा के साथ में यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करा, ये भी बड़े सौभाग्य की बात। श्रीमद् भागवत वेदांत का, उपनिषदों का श्रुति और स्मृति, रामायण महाभारत सबका यह सार। कल हमने इसकी महिमा के संबंध में इस स्कंद पुराण से हमने कुछ सुनाया था। अभी श्रीमान शुभानंद जी महात्म के बाद महात्मा साधारण संक्षेप में और फिर श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ कर, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहिए, तभी कुछ अस्वस्थ रहने के कारण मैं इतना देर तक 6-6 घंटे मेरे लिए बोलना जरा असुविधा की बात है, इसलिए बीच बीच में मैं जहाँ आवश्यकता होगी मैं इसका प्रवचन करूँगा। श्रीमान शुभानंद जी भागवत भूषण हैं, भागवत के देखने में छोटे सुखदेव गोस्वामी की ही उम्र जैसे मालूम पड़ते हैं, किंतु बहुत ही प्रौढ़ विद्वान हैं, सिद्धांतविद और वैष्णव भी, गुरु वैष्णव के निर्वाह की उन्होंने श्रीमद् भागवत का विधिवत, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने व्यास के यहाँ उनके चरणों में बैठ करके भागवत की शिक्षा लाभ की थी, ऐसे ये वैष्णव के चरणों में बचपन से ही भागवत इत्यादि समस्त शास्त्रों का अध्ययन इन्होंने दिया। यदि भागवत सुनना चाहिए तो वैष्णवों के मुख से ही सुनना चाहिए, मैं समझता हूँ कि सर्वथा ये योग्य है, आप लोग बड़े प्रेम के साथ में ये सब चीज सुनेंगे, जहाँ जहाँ पर होगा मैं समझूंगा आवश्यक वहाँ पर मैं कुछ बोलूँगा। पहले ये आप लोग समझ जाइए, श्रीमद् भागवत ऐसा एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष नहीं बल्कि निगम कल्प करोगितम फलम सुखमुखाद अम्ल द्रव संयुतम पियोद्भागवतम रसमालयम महोरहो रसिका भूभाविका। इसका पहले का श्लोक है, जन्मादस्य जत अन्वयादि तरतश्च इत्यादि, उसमें समस्त वेदों का सार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र के यहाँ से आरंभ करके उसी की भाषा व्याख्या में ये बतलाई, ओंकार प्रण जो है वही श्री भगवान स्वयं है, उसी की व्याख्या गायत्री जी है, उसी गायत्री का विस्तार वेदांत है और वेदांत का अर्थ या भाष्य ये श्रीमद् भागवत। व्यास जी समस्त शास्त्रों का प्रणयन करने के बाद और उसका प्रकाश करने के बाद में वेदों का विभाग करके महाभारत इत्यादि ग्रंथ की रचना करके भी उनको तृप्ति नहीं हुई, तो व्यास जी की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत को भक्ति योग से देखा। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणते अमले अपश्च पुरुषम पूर्णम मायां से जदा पाप। उन्होंने श्रीमद् भागवत को व्यास जी की कृपा से योग समाधि में उन्होंने दर्शन किया और अपश्च पुरुषम पूर्ण पूर्ण पुरुष को देखा, पूर्ण पुरुष कौन है? समस्त अवतारों के मूल अवतारी, रसो वैसा रसत स्वरूप स्वयं ये भगवान, समस्त देवताओं इत्यादि के, ब्रह्मा इत्यादि के भी आराध्य के भी परमाराध्य, समस्त शक्तियों से समन्वित सर्वशक्तिमान, समस्त कारणों के कारण, उनका कारण कोई नहीं, वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही परतत्व है, अद्वैत ज्ञान परतत्व है। साथ में उनकी राधा जी को देखा, राधा जी के साथ में ललिता विशाखा इत्यादि अष्ट सखियों को भी देखा, उनकी जितनी भी शक्तियां हैं समस्त गोपियों को देखा, आराध करते हुए देखा, जन्म लीला से आरंभ कर द्वारका लीला में लीला संगोपन तक सबको एकदम जथा जैसे रूप में देखा। देखने के बाद में उन्होंने ये भी देखा, जो कि भगवान का भजन करते हैं कृष्ण का, वो लोग माया से पार होकर के जा रहे हैं कृष्ण के चरणों में, वो लोग वृंदावन में, और जो लोग भगवान का भजन नहीं करते विमुख हैं, वो लोग ऊपर से नीचे गिर रहे हैं माया में और उसमें जर्जरित होते हैं लाखों जन्मों तक। ऐसे जीवों की कृपा करने के लिए भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की को प्रकाश किया। यह भागवत पहले चतुश्लोकी रूप में नारायण जी से मिला नारद जी को, नारद जी से व्यास को, व्यास से फिर मिला सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित की सभा में सब लोगों को श्रवण कराया। यही पर तो जस्या वही सूर्यमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रूपपद्यते पुंसः शोक मोह भयाता। शोक मोह और भय को दूर करने वाली भगवान के चरणों में पहले साधन भक्ति, पीछे से भाव भक्ति और अंत में प्रेम भक्ति, यहाँ तक कि ब्रज की अंतिम प्रक्रिया गोपियों के कृष्ण प्रेम को भी ये देने वाली श्रीमद् भागवत है, ऐसा उन्होंने बनाया। भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी को कहा गया, उसमें कह रहे हैं निगम कल्प सरोज गलतम फलम सुगम साध अमृत संगीत। ये सुखदेव गोस्वामी जी हैं कौन? साधारण रूप से पुराणों के पढ़ने से, श्रीमद् भागवत इत्यादि के देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये पहले नैर्गुण्य में प्रतिष्ठित थे, निराकारवादी ब्रह्मवादी ये थे। व्यास जी ने इनको राजा जनक की के पास में भेजा और सब शिक्षाओं के बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवत की शिक्षा स्वयं इनको दी थी। फिर पीछे उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव परीक्षित महाराज की सभा में, किंतु जब विशेष रूप से हम विचार करते हैं आंखों के सामने यदि सब समय न रहे तो अच्छा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जहां तक हो सके कम प्रयोग करें, बहुत कम प्रयोग करें। तो जब सुखदेव गोस्वामी के संबंध में हम विचार करते हैं, हाँ, कथा का लाभ उठाए सब लोग, अधिक आडंबर न होना। सुखदेव गोस्वामी हैं कौन? इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, नित्य मुक्त पुरुष थे, माया में वो नहीं थी। जीव गोस्वामी के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि सुखदेव गोस्वामी जी हमारी प्रिया जी के बड़े प्रिय सुख थे। प्रिया जी माने किशोरी जी, राधिका जी, इनके बड़े प्रिय सुख थे। एक समय जब कृष्ण की लीला चल रही थी, प्रकट लीला, उसने ये सूप राधा जी के हाथों पर बैठे हुए थे और राधा जी उनको अनार के दाने उनको खिला रही थी, बड़ी कोमल कोमल, और उसके एक हाथ पर रखकर दूसरे हाथ से उसके पीठ पर हाथ घुमाती हुई कहलाती हुई कृष्ण कहो कह रहा। सुख पक्षी में ये विशेषता है कि वो जैसे जिस चीज का स्वर नकल करता है ठीक वैसे ही आवाज नकल करता है। राधा जी भी मधुर कंठ से कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण कह रही हैं, वो ठीक वैसी तरह से मधुर कंठ से और वो भी कृष्ण कृष्ण कहने लगे। ठीक राधा जी के स्वरों में और उनके स्वरों में कोई भी अंतर नहीं, अभिकल वैसे ही मधुर कंठ से वो भी कहने लगे। थोड़ी देर में सूप उनके हाथों से उड़ गया और उड़ करके बरसाने से वो नंद गांव में पहुंचे। नंद जी के बगीचे में कृष्ण वहां पर बैठे थे। तमाल के वृक्ष पर वह बैठ गया जहां पर कि कृष्ण और मधुमंगल जी कुछ बातें कर रहे थे। ये उस सूप पक्षी उस तमाल वृक्ष पर बैठ करके तमाल की पत्नियों में ये हरा वो हरा दोनों मिल गए और उन्हीं से कहने लगा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण तो राधा जी की बोली को समझते थे क्योंकि राधा कहां से आ गई, इधर उधर देखने लगे, राधा जी को खोजने लगे और उनको देख करके ये सूप पक्षी कृष्ण कृष्ण कहने बहुत उत्कंठा से देखने के बाद उन्होंने देखा तमाल वृक्षों की पत्नियों ने हरे भरे में छिप कर और बड़ा सुमधुर कंठ से ये कह रहा है कृष्ण कृष्ण कहा। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उसके पास धीरे धीरे पहुंच गए और बड़े मधुर शब्द से उसको पास बुलाने लगे और पास बुलाने से वो झट आ गया और कृष्ण के कंधे पर बैठ गया। कृष्ण ने उसको भी अपने हाथों में ले लिया और हाथ पर बैठा दिया। बोलो तो क्या कह रहे थे, फिर बोलो तो फिर वह कहता कृष्ण कृष्ण। कृष्ण के आंखें छलछलाए, ये राधा जी का स्वर कैसे निकल कर लिया, ठीक उसी रूप में बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद में वो सुख कहता है क्या इस श्लोक में ही कह रहा है, श्लोक मुझे पूरा याद नहीं, तो उसका भाव यह है मेरे जैसा दुर्भाग्य इस पृथ्वी में किसी ने जन्म नहीं लिया, मैं बड़ा ही दुर्भागा हूं, मैं प्रिया जी के हाथों पर बैठा था और बड़े स्नेह से हाथों को सहलाती हुई मुझे अनार का दाना चुंगाती हुई और बड़े कोमल और मधुर स्वर से हमें कृष्ण कृष्ण पढ़ा। मैं साथ जाति का दुर्भागा और जाति से चंचल उनके हाथों से उड़कर के यहां चला है। कृष्ण ने कहा जी क्या कहा तुमने, फिर से कहो तो। कृष्ण की तृप्ति नहीं हो रही, बार बार उसे उच्चार करा। इतने में दो किशोरियां वहां पर पहुंची, ललिता जी और विश्वा जी। कृष्ण से बोली कन्हैया जी ये हमारे प्रिया जी का सूप है, उसके बिना तो ये रह नहीं सकती, ये सूप उनका प्राण है, आप जल्दी से शीघ्र यदि उनको बचाना चाहते हैं तो इसको लौटा दीजिए। उन्होंने कहा मैंने थोड़ा इसको पकड़ा, मेरे हाथ पर ये बैठा है, जिसका सुख है उसे बुला करके ले ले, किंतु जबरदस्ती किसी को लेने नहीं दूंगा, बुला ले उसको कोई बात। तो वो दोनों कहते हैं ऐसा विश्व में कोई चीज प्राणी पशु पक्षी मनुष्य कोई भी है जो मोहन के हाथों पर बैठ जाए, उनके निकट हो और उनको कोई दूसरा बुलाने से आ जाए। हाँ एक है किंतु वो है यहां नहीं, वो तो इस पक्षी को क्या सुख पक्षी समेत उनको भी वो बुला लेंगे, वो भी दौड़ करके उसके पास में चले जाएंगे, वो शाम जो है वो भी मदन मोहन खुद उनके पास में चले आएंगे सुख के समय, किंतु वो है नहीं, इसलिए आप इसको देखिए। बहुत कहा कहने के लिए उन्होंने नहीं दिया, कहते जिसका है बुला ले, नहीं दिया तो वो मैया के पास में, मैया हमारी किशोरी जी उस सुख के विरह में रो रही हैं, तड़फड़ा रही हैं, आप श्याम सुंदर से कह करके हमको गिला दीजिए, नया बेटी बैठ जाओ अभी, बड़े स्नेह से चुंबन करके उनको बैठा दिया, बैठ जा मैं अभी लाती हूँ। ये कह करके जहाँ पर कृष्ण और मंगल मंगल जी बातें किए करते हुए सुख से बातचीत कर रहे थे वहाँ पर, और झपट्टे से मार करके सुख को ले लिया। सब समय तुम लखन करता है, गंदी गंदी चीजों को लेकर बैठ जाता है। अभी उसको पकड़ लिया और एक हाथ से उनको पकड़ लिया और उनको खींचते हुए, तुम्हारे पिताजी अभी खाने के लिए बैठे हैं, अब तुम इसी के साथ में खेल रहे हो, गंदी गंदी चीजें, अभी स्नान करा और फिर तुमने इसको पकड़ लिया। बस कृष्ण समझ नहीं सके, लेकर तो पकड़ करके ले आई। अब कृष्ण को वहां पर बैठा दिया स्नान करने के लिए, और सुख पक्षी को ललिता विशाखा को दे दिया, वो लेकर के यही सुख। जब कृष्ण की लीला समाप्त हुई, देखिए कैसे ये राधा कृष्ण दोनों के प्यारे हैं। कृष्ण लीलाओं का सब समय राधा के विलास इत्यादि को समस्त ब्रज के जितने भी लीलाएं हैं इनको सबको दिन रात आस्वादन करके मत रहते हैं, कैसे ही उनके प्यारे हैं। जब कृष्ण की लीला समाप्त हो गई, कृष्ण लीलाओं को लेकर के अप्रकट वृंदावन में जब चले गए, गोलोक वृंदावन, अब सुख को आदेश दिया, आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, हमारे साथ में आप नहीं जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे, आप रहेंगे यहां। जैसे रामचंद्र जी ने हनुमान को यहां रख दिया, इसलिए रख दिया उनकी कथाओं का प्रचार, इसलिए आपको भी यहां रहना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप कुछ आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता, और श्रीमती जी के बिना मैं रह नहीं सकता, कहे जैसे तैसे भी कुछ दिन के लिए रहो, श्रीमद भागवत का प्रकाश करने के बाद में आप फिर चले आए। अब वो सुखी उनका आदेश पालन करने के लिए पृथ्वी में तो रह गए, कृष्ण की लीला उनका ध्यान हो गई, अप्रकट लीला में चली गई, अब ये पृथ्वी में घूम रहे हैं, कहां कृष्ण, कहां राधा, कहां कुछ लीला कथाएं हो रही हैं, एकदम पागल हो गए, घूमते घामते कैलाश के पास में पहुंचे। शंकर जी इसी अमर कथा को पार्वती जी को सुना रहे हैं, और कहेंगे कोई भी दूसरा सुनने वाला अधिकारी नहीं है, तो मन से सुनना, पार्वती जी सुनते जी। प्रथम स्कंद आरंभ किया, दूसरा स्कंद आया किसी प्रकार से रही, कुछ स्त्री जाति के स्वभाव से भी, जब सृष्टि इत्यादि का जब प्रसंग आया ना, भगवान की व्यवहार की लीला जिसको कहते हैं गौण लीला, जब उसका आरंभ किया, और जब मैत्रेय और उद्धव का संवाद, मैत्रेय और विदुर का संवाद जब भी सुनाने लगे, तो धीरे 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 आवर से आया जम भाई दो एकाई, और उसके बाद में सो गए, बैठे बैठे सो गए, किंतु कथा बंद नहीं रही, हुंकारी जो भर रही थी हूं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आगे, तो वो हूं ऊपर से आवाज आने लगी। शंकर ने सोचा कि ये पार्वती जी का ठीक जैसा वो नकल करके उनका स्वर वैसी रूप में कह रहा था, इसलिए श्री जी को संदेह नहीं हुआ, इसलिए वो सुनने लगी, वो कहने लगा हूं। शंकर जी बड़े आनंद के साथ कथा कह रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं कि सोई हुई है, वो कथा बातें भी वैसे हैं, भगवान की कथाओं में एकदम संग्रह हो गए, शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रही, कथा चल रही है। जब दशम स्कंद समाप्त हुआ, एकादशवां स्कंद जब आया, तो पार्वती जी उठी, अरे मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो सो गई, जरा फिर से कहना तो राज्य तो हूं कार्यक्रम भरा, किसने अहंकार किया? चारों तरफ में शंकर जी खोजने लगे। अनाधिकारी को ये नहीं सुनना चाहिए, न सत समा करे जातु मनसाति ही अनिश्वर। जो अनिश्वर हैं, जिनको मन जितेंद्रिय नहीं हुआ है, इंद्रियों को जीत नहीं लिया, काम क्रोध लोभ मद मोह को जिन्होंने जीत नहीं लिया, वो निर्गुण जो भक्ति परायण जो हूं वो इसकी अधिकार। इसलिए खोजने लगे जो कौन है, बहुत बारीकी से देखने पर देखा एक शुभ पक्षी बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, हरे पत्तियों में एकदम छिप कर और वहीं हंकारी भर रहा है। बस त्रिशूल उठाया उसे मारने को और वहां से उड़ा और उसके ठीक बद्री काश्रम में पहुंच गया। वो भी समझता कि उसको कहां जाना चाहिए, कहां उड़ करके, इसलिए झट वहां पर गया। शंकर जी भी उसके पीछे पीछे दौड़े और उसी बद्री काश्रम में पहुंचे। व्यास जी अपनी पत्नी भीतिका जी को भगवान की यही कथा श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे और वो आश्चर्यचकित होकर बड़े मुग्ध होकर के सुन रहे हैं और मुख थोड़ा सा खुला रह गया। और शंकर जी उसको पीछा करते हुए जब वहां आए तो वो झट उनके मुख में प्रवेश कर गया, भीतिका जी के मुख में, और उनके गर्भ में चला गया। शंकर जी आकर के फिर कहां गए, किधर, जहां तक तो उतर के आए, उधर के बाद में कहां गया? व्यास जी से पूछा। एक